मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज 2 जून 2015 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल अमेरिका से आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, एकेडमी की जो 25 अक्टूबर से क्लासेस होने वाली हैं 15 दिन के लिए, उसके लिए 3 नौजवान साथियों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन 3 नौजवान साथियों का भी मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इन 3 दोस्तों के नाम हैं ओम चंद्र मिश्रा वाराणसी से, रोहित तिवारी नवगांव छतरपुर से, और नवगांव छतरपुर से ही हैं रवि गुप्ता। तो ओम चंद, रोहित और रवि, आप तीनों नौजवान साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप आइए, हमारी पूरी एकेडमी आप लोगों के स्वागत की तैयारी में लगी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों की सुविधाओं के लिए भी, और साथ ही साथ बट नेचुरल है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो स्टडी है, वो टीचिंग है, वो लर्निंग है, उसके लिए भी। तो मित्रों, आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एक थोड़ी सी निराश और या कह लीजिए कि थोड़ी सी तकलीफ देने वाली खबर मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, और इसलिए भी शेयर करने जा रहा हूं कि आप सबकी शुभकामनाओं की जरूरत है। वो खबर ये है मित्रों कि आप लोगों को ध्यान होगा, बहुत पहले मैंने एक स्टूडेंट के बारे में चर्चा की थी, मिस्टर राय, जो जौनपुर के रहने वाले स्टूडेंट हैं। वो सेकेंड बैच में हमारे स्टूडेंट रहे हैं और MIT जो बॉस्टन में, अमेरिका के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो वर्ल्ड के का बेस्ट टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट माना जाता है, वहाँ उनका एडमिशन हुआ था। वो वहाँ गए हुए भी हैं और आपको ध्यान होगा कि इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत मेल भेजा था कि वो स्टूडेंट जो क्लास के दौरान, मतलब मार्च में ही क्लास हुई थी इसी साल के मार्च में, स्टेज पर आकर के 5 मिनट तक खड़े रहे थे, बोल नहीं पाए थे, उन्होंने ही MIT में जाकर के 1.5 घंटे का धारा प्रवाह अपना प्रेजेंटेशन दिया था, जिसका श्रेय उन्होंने एकेडमी की उस गतिविधि को दिया था। मित्रों, अभी मेरे पास मेल आया, खासकर चूंकि मैं अमेरिका में हूं और न्यूयॉर्क में रह रहा हूं, न्यूयॉर्क से जो बॉस्टन है वो काफी नजदीक है। काफी नजदीक का मतलब है कि लगभग लगभग अगर आप ड्राइव करके जाते हैं तो 4 घंटे लगेंगे, और आप ट्रेन से जाते हैं तो लगभग 3 घंटे लगते हैं। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार बॉस्टन जाऊं, क्योंकि बॉस्टन में ही दुनिया के 2 बहुत बड़े लर्निंग सेंटर हैं, एक तो मैंने अभी आपसे चर्चा की MIT और दूसरा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं वहां जाऊं और एक बार उसके दर्शन करके आऊं, उसकी मिट्टी का वो प्रणाम करके आऊं। मित्रों, फिर मैंने एक मेल लिखा राय को, लेकिन उसके राय के बदले में राय के भांजे का मेल आया कि उसके स्टूडेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा असर खराब है, वो ICU में भर्ती हैं। लेकिन उन्होंने कहा था मुझे कि AFE से जब कोई भी खबर आए तो उनको रिप्लाई करते रहें, और सर की अगर कोई मेल हो तो उनको जरूर बताएं इसके बारे में। और उन्होंने ये भी लिखा कि हम लोग मामा को लेकर के और बहुत जल्दी कनाडा भी शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि कनाडा में मिस्टर राय के फादर और मदर हैं। मेरी समझ में नहीं आई चीज़ें, बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ, और मैंने तुरंत फिर एक मेल उनको भेजा कि क्या बात है और क्या तबीयत है, कैसी है, क्या परेशानी हुई, जरा प्लीज़ इन्फॉर्म मुझे करें। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई मेल नहीं आया है। मेल की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि सही वस्तु स्थिति पता लगे कि ऐसी क्या बात हुई कि ICU में भर्ती करना पड़ गया। लेकिन एक संतोष मुझे हुआ कि जिस तरह से वो अपने भांजे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो स्थिति काफ़ी कुछ नियंत्रण में है। मित्रों, ये एक खबर है और मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं से ये अनुरोध करता हूं, और बट नेचुरल है कि आप लोगों के इसमें मैं शामिल हूं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा शामिल है, मेरी बहू शामिल है, और नो डाउट की पूरी एकेडमी शामिल है। हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, उस नौजवान को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करो, पूरी तरह से स्वस्थ करो, ताकि वे फिर पूरी एनर्जी के साथ अपने काम से लग सकें, अपने काम पर आ सकें, उसी उत्साह के साथ, उसी भावना के साथ। मित्रों, आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, आप लोगों की शुभकामनाओं की जरूरत है। और निश्चित रूप से जब इतनी सारी शुभकामनाएं और इतनी सारी दुआएं और इतनी सारी प्रार्थनाओं की लहरें जब अंतरिक्ष में व्याप्त होंगी, तो मुझे कोई दो राय नहीं कि वे अपना काम करेंगी। और मिस्टर राय बहुत जल्दी हम लोगों को मेल भेजेंगे कि नाउ आई एम परफेक्टली ऑल राइट, और मैं फिर से बहुत जल्दी आप लोगों को अपने इसी ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से वो खूबसूरत अच्छे और सुखदाई मेल की सुखद सूचना दूंगा। तो मित्रों, हम सब प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, उन्हें जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें। मित्रों, इसमें आप बिल्कुल भी चूक मत कीजिएगा, खासकर सेकेंड बैच के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से उस स्टूडेंट से परिचित हैं, बहुत प्यारा, बहुत सीधा साधा और बहुत ही लवली और इनोसेंट स्टूडेंट है मिस्टर राय। और निश्चित रूप से ईश्वर भी जानते हैं कि जो नादान होते हैं, जो इनोसेंट होते हैं, जो भोले भाले होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। और ईश्वर हमारे माता भी हैं और पिता भी हैं, और डेफिनेटली वो सबसे अधिक केयर करेंगे। मित्रों, एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी ओर से और आप सब की ओर से भी मैं अब इस ऑडियो गाइडेंस को आगे बढ़ा रहा हूं। दोस्तों, कल दोपहर के बाद मैं और मेरी पत्नी यही न्यूयॉर्क, एक स्टेट भी है, शहर भी है और एक राज्य भी है, और न्यूयॉर्क से ही सटा हुआ एक दूसरा स्टेट है, नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, न्यूजर्सी। न्यूजर्सी में एक नगर है, कह लीजिए एक छोटा सा शहर है, जो भी आप कह लें, वो है एडिसन। हम लोग कल वहां गए थे, हमारे एक परिचित थे, उनके यहाँ डिनर था, उनके यहाँ उनसे मिलना भी था। एडिसन गए मित्रों, तो बट नेचुरल है कि आप लोग जानते हैं कि मैं एडिसन का कितना बड़ा फैन हूं, और हो सकता है कि इससे पहले के भी ऑडियो में मैंने कई बार थॉमस अल्वा एडिसन की चर्चा की हो, और जब क्लासेस होती हैं तो उसमें तो मैं उनकी चर्चा करता ही हूं। मित्रों, थॉमस अल्वा एडिसन, जिनके नाम पर ये एडिसन शहर रखा गया है, उनका नाम रखा गया, शहर का नाम रखा गया है, उनका जो जीवन है वो बहुत बहुत अधिक प्रेरणादायी है। और सच पूछे तो मैं आज एडिसन के पड़ोस वाले राज्य से आप सबसे ये अपील कर रहा हूं कि जहां तक संभव हो सके ढूंढिए और आप एडिसन की लाइफ को पढ़िए, उनके जीवन चरित्र को पढ़िए। मित्रों, इसलिए खासकर क्योंकि एडिसन एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें हम सब अपने आप को देख सकते हैं। देखिए, जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, अलग तरीके की जिनके पास प्रतिभाएं हैं, उनकी बात मैं नहीं करता। वो अपने ढंग से अपने रास्ते बना लेते हैं या बन जाते हैं, जो भी होता हो, कुछ ऐसा अद्भुत प्रकृति करती भी है। लेकिन जो ज्यादा बड़ी संख्या है वो एक सामान्य व्यक्तियों की है, जिनके पास कोई अद्भुत प्रतिभा नहीं है, या ये कह लीजिए कि जिन्होंने अभी तक किसी अद्भुत प्रतिभा का प्रमाण नहीं दिया है। तो वो क्या करें, क्या जीवन में सफलता के लिए, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, या अमरत्व प्राप्त करने के लिए, विश्व प्रसिद्ध बनने के लिए, क्या किसी अद्भुत प्रतिभा की ही जरूरत है? और यदि वो नहीं हुई तो क्या हम फिर इस उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकते? मित्रों, इसका जवाब हमें थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन में मिलता है। एडिसन का जीवन इसका एक बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही रियलिस्टिक आंसर है कि नहीं, अगर किसी में अद्भुत प्रतिभा नहीं है, जो ज्यादातर लोगों में नहीं होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रास्ते दूसरे ऐसे बहुत से हैं जिस पर चलकर आप, हम सब अपने जीवन की सर्वोत्तम ऊंचाई वाली मंजिल को पा सकते हैं, ऐसी ऊंचाई वाली मंजिल को जिसे दुनिया अपना सिर उठाकर देखेगी और देखने के बाद अपना सिर झुकाकर सलाम करेगी। मित्रों, एडिसन एक बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा हुए। आप कल्पना करके देखिए कि ऐसे सामान्य परिवार में और ऐसी सामान्य प्रतिभा के साथ कि स्कूल से उन्हें बुद्धू कह के निकाल दिया गया था कि इस लड़के को पढ़ाया नहीं जा सकता, अब क्या किया जाए। बहुत छोटी सी उम्र में एडिसन ने जो शुरुआत की अपने जीवन की, कोई बात नहीं, मां घर में पढ़ाने लगी, अक्षर ज्ञान कराने लगी, अपने सिर पर छोटे से कोमल सिर पर छोटी सी गट आप टोकरी लेकर जिसमें थोड़ी सी साग वेजिटेबल्स डाल करके अपने गांव में बेचने लगा। 12-13 साल की उम्र से एडिसन ने इस बात की शुरुआत कर दी थी। आपको लगता है कि वो इतना बड़ा वैज्ञानिक है कि जिन्होंने माइक्रोफोन का आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार किया, दुनिया की तस्वीर बदल करके रख दी। नो डाउट कि दुनिया के सबसे बड़े अभी जो थोक आविष्कारक माने जाते हैं वो एडिसन माने जाते हैं। उन्होंने जितने आविष्कार किए हैं लगभग 2500 शायद पेटेंट उनके नाम पर हैं, उतने दुनिया के किसी भी एक व्यक्ति ने नहीं किए। इसीलिए उन्हें थोक आविष्कारक कहा जाता है। उसने शुरुआत जो की थी स्कूल से मूर्ख कह के निकाल दिया गया था, और फिर क्या करें तो सिर पर टोकरी रखकर और टोकरी में थोड़ी सी सब्जियां डालकर बेचा करते थे। इसके बाद फिर शहर चले गए ये सोच करके कि वहां सब्जियां ज्यादा बिकेंगी। अब शहर जब चले गए तो और क्या करें, जब यहां भी जब गांव में थे तो केवल सब्जियां नहीं बेचते थे, फिर उन्होंने सामने की जमीन की सफाई करके वहां सब्जियां उगानी भी शुरू कर दी कि चलो इससे ज्यादा फायदा होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर शहर गए क्योंकि शहर में उनको लगा कि थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन सब्जियां तो सुबह सुबह ही बिकती थी, दिन भर क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि और कुछ कर लिया जाए, तो ट्रेन में अखबार बेचने लगे। अब अखबार भी वहीं बिकते थे जहां ट्रेन रुकती थी, क्योंकि तभी स्टेशन पर आप दूसरों को अखबार बेच सकते थे। अब क्या किया जाए, तो उन्होंने ट्रेन में ही गार्ड से बात करके अखबार छापना शुरू कर दिया। छोटी सी प्रिंटिंग मशीन लगा ली, आप सोच करके देखिए, एक डब्बे में गार्ड से परमिशन लेकर के, और थॉमस अल्वा एडिसन दुनिया के वो पहले व्यक्ति थे और सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्होंने चलती ट्रेन में अखबार छापा, अखबार का संपादन किया और बेचा भी। वो छोटा सा बच्चा, आप कल्पना करके देखिए। और एक दिन हुआ ऐसा कि कुछ मशीन में गड़बड़ हो गई और उस ट्रेन के डब्बे में आग लग गई। गार्ड ने इतना जो जम करके चाटा एडिसन के गाल पर मारा कि उनका एक कान बहरा ही हो गया और उन्होंने वो काम छोड़ दिया। इसके बाद वो टेलीप्रिंटर की उस समय शुरुआत हुई थी, टेलीप्रिंटर पर नौकरी करने लगे, लेकिन उनके साथ मुश्किल ये थी कि वो टेलीप्रिंटर पर नौकरी कम करते थे, एक्सपेरिमेंट ज्यादा करने लगते थे, उस नौकरी से निकाले गए। इसके बाद से फिर उन्होंने इसी तरह के काम शुरू किए, यहां से इनकी जिंदगी की शुरुआत हुई है मित्रों। फिर उनके जीवन में एक घटना घटी जिसकी वजह से उन्होंने काफी पैसा उन्हें मिला, और वो घटना छोटी सी भी ये थी कि एक जगह पर उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी है और लोग चिल्ला रहे हैं। दरअसल हुआ यह था कि वहां टेलीप्रिंटर पर लगातार शेयर मार्केट के रेट आते रहते थे, गोल्ड के मार्केट के खासकर, और टेलीप्रिंटर खराब हो गया था, रेट आने बंद हो गए थे, लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। क्योंकि जो शेयर मार्केट होता है आप जानते हैं, उसमें एक एक मिनट एक एक सेकेंड का रेट चाहिए, क्योंकि मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव चलता रहता है। उसे बहुत लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, मशीन नहीं बन रही थी, और उसमें इस लड़के ने जिसकी उम्र मुश्किल से 15-16 साल की रही होगी, हिम्मत करके कहा कि कहिए तो मैं इसको एक बार ट्राई करके देख लेता हूं। लोगों को लगा, मालिक को लगा, जो कंपनी के मालिक थे, नहीं हो रहा है तो चलो इसी को ट्राई करने दो। और उन्होंने ट्राई किया और विद इन मिनट्स टेलीप्रिंटर ने काम करना शुरू कर दिया, और उससे वो मालिक इतना खुश हुआ कि उन्होंने जो एडिसन को जो रकम की दी थी वो आप कल्पना नहीं कर सकते। एक एक डॉलर, दो दो डॉलर कमाने वाले एडिसन को उस समय $40,000 मिले, और वहां से उनके जीवन की एक अलग शुरुआत हुई। एडिसन ने दोस्तों जो सबसे बड़ी बात कही थी वो मैं यहां आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि जो जीनियस है, जिसको हम जीनियस कहते हैं, वो और कुछ भी नहीं है, जो उपलब्धियां हैं वो कुछ भी नहीं है, 99% हार्ड वर्क और केवल 1% उन्होंने माना था प्रतिभा है। बस केवल इतना ही कि प्रतिभा केवल 1% काम करती है, जो 99% होती है वो आपकी मेहनत होती है, जिसे अगर आप चाहें तो कल मैंने जिस करेक्टर की बात की थी दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश आज केवल इसलिए इतनी ऊंचाई पर नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि इनके पास संसाधन बहुत हैं या बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हैं, बल्कि ये है कि यहां के लोगों का थोड़ा सा करेक्टर डिफरेंट है, और उस करेक्टर ने ही उन्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। मैंने 2-3 घटनाएं भी आपको इसके बारे में बताई थी। तो जो करेक्टर है वो यही हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब ये नहीं कि कितने आवर्स आप काम कर रहे हैं, उसमें करेक्टर भी शामिल होता है। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप सब एक बार थॉमस अल्वा एडिसन की जीवनी जरूर पढ़ने की कोशिश करें, आप देखेंगे कि आपका अपने प्रति विश्वास बढ़ेगा, जीवन के प्रति एक डिफरेंट नजरिया पैदा होगा, और निश्चित रूप से आपका जो वर्किंग पैटर्न है उसमें वो बदलाव लाएगा। मैं और कभी बात करूंगा मित्र, थॉमस अल्वा एडिसन तो मेरे बहुत प्रिय हैं और उनकी बहुत सी घटनाएं मुझे मालूम है क्योंकि उनके कई कई लोगों के द्वारा लिखी गई जीवनी मैंने पढ़ी है। फिलहाल अभी इसको यहीं पर ड्रॉप छोड़ते हैं क्योंकि सब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, फिर टुकड़ों में हम थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बातें करेंगे। तो मित्रों अब मैं आता हूं अपने सेकेंड चरण पर, सेकेंड स्टेज पर, और वो है कल के AIR न्यूज के बारे में। मित्रों कभी कभी होता यह है कि AIR न्यूज में आपको सीधे सीधे अपने काम की चीज नहीं मिलेगी, कभी कभी होता यह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि उसमें कोई भी काम की चीज ना हो। देखिए सीधे सीधे काम की चीज का मतलब है कि जिसे आप सिविल सर्विस में उसका सीधे उपयोग कर सके, वो सीधे सीधे काम की चीज है। जब कोई बहुत बड़ी घटना होती है और मैं उसके बारे में चर्चा भी करता हूं कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो छोटे छोटे कंटेंट के रूप में होती हैं, रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं लेकिन वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। लेकिन जो AIR न्यूज का जो कमाल है वो यही है कि भले ही वो स्पष्ट रूप से दिखाई न दें, यानी कि वो सरफेस पर न हो, लेकिन अपने छोटे छोटे कणों के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अधिक मायने रखती हैं, बहुत अधिक महत्व रखती हैं। उसका कारण यह है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये हर की पकड़ में नहीं आती, हर कोई इन्हें पकड़कर नहीं चलता। बड़ी बड़ी चीजों को तो हर कोई पकड़कर चलता है और लिख करके भी आता है परीक्षा में, बातचीत के दौरान, इंटरव्यू के दौरान बताता भी है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन महत्वपूर्ण होती है। छोटी छोटी चीजों का मतलब यह नहीं कि महत्वहीन है लेकिन आप उसे महत्वपूर्ण बना रहे हैं, नॉट एट ऑल। वो महत्वपूर्ण तो है लेकिन छोटी है किसी और वजह से, कि वो इंडिपेंडेंटली उन पर चर्चा नहीं हो रही है, इंडिपेंडेंटली उन न्यूज में वो चीजें नहीं आ रही हैं, तो इसीलिए जो सामान्य श्रोता होते हैं या जो सामान्य स्टूडेंट होते हैं उनके हाथ से वो चीजें छूट जाती हैं, लेकिन होती महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के जरिए मैं अब आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, अन्यथा चीजें बहुत ही वो हो जाएंगी। जैसे अभी भारत और स्वीडन की बात को लीजिए, जहां हमारे अभी प्रेसिडेंट गए हुए हैं, राष्ट्रपति जी गए हुए हैं। न्यूज में कल आपने सुना कि भारत और स्वीडन ने कई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें दो पॉइंट्स उन्होंने ज्यादा हाईलाइट किए। नंबर एक, सतत शहरी विकास। हमारे प्रेसिडेंट साहब गए भी जो वहां की स्मार्ट सिटी है वहां, तो एक समझौता था सतत शहरी विकास और दूसरा जो समझौता था वो था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ध्यान दीजिए ये दो बातें थी उसमें। और आप देख रहे हैं कि जब हम अभी इंडिया के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियों की बात कर रहे हैं, आर्थिक दिशा की बात कर रहे हैं या मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग हब की बात कर रहे हैं या 8% तक एनुअल ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं या हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो उन सारी की सारी बातों में ये दोनों चीजें शामिल हैं, सतत शहरी विकास और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। मित्रों अभी मैंने ढेर सारी पॉइंट्स आपको दिए कि ये ग्रोथ रेट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और मेक इन इंडिया है और मैन्युफैक्चरिंग हब है और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग है, ये ढेर सारे मैंने आपको जानबूझकर बातें कही हैं और फिर मैंने अभी रिपीट भी किया है, इसलिए कि कहीं ना कहीं ये जितनी भी चीजें हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग थलग नहीं है। इसीलिए आप इनके बारे में जब भी कुछ पढ़ें या अपना नजरिया विकसित करें तो अलग अलग मत करिएगा, ये सारी के सारी एक ही बहुत बड़े हिस्से के छोटे छोटे टुकड़े हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात लें कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करते हैं कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, या हम जब FDI की बात करते हैं तो FDI की बात हम क्यों कहते हैं कि भाई आप भारत में निवेश कीजिए, निवेश करके आप क्या करेंगे, मतलब कोई चीज बनाइए, इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कीजिए। अब आप देखिए कि कोई भी जो फॉरेन से जो इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा या वो पूंजी लगाएगा लेकिन भारत के किसी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा, तो वो छोटे मोटे उद्योग नहीं खोलेगा, वो बहुत बड़े बड़े उद्योग खोलेगा। तो जब बहुत बड़े बड़े उद्योग खोलेगा तो फिर जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं, जो मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं, उनका क्या होगा, सब वाइप आउट हो जाएंगे, सब के सब बाहर हो जाएंगे। तो क्या भारत को ऐसा करना चाहिए? क्योंकि देखिए, भारत का जब पूरे आप एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हर देश का अपना एक सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है और उसी के अकॉर्डिंगली उसको अपने यहां के बारे में डिसीजन लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो बात चाइना को सूट कर रही है वही बात ज्यों की त्यों भारत को भी सूट करेगी, क्योंकि चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिफरेंट है और भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिफरेंट है, बावजूद इसके कि दोनों ही एशिया के देश हैं और दोनों ही दोनों के पास बहुत बड़ी जनसंख्या है, ये एक रिसोर्स है, लेकिन सेम बातें नहीं हो सकती। ठीक यही बात डेवलप्ड कंट्री के बारे में है। जैसे आज अमेरिका को मैं अगर आपकी अमेरिका के बारे में चर्चा करूं मित्र, तो अमेरिका ने अभी अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल बंद सी कर दी है। अमेरिका एक सही मायने में अब मैन्युफैक्चर नहीं करता चीजें, वो सारी चीजें आउटसोर्स कर रहा है, दूसरे देशों से तैयार करवा रहा है और अपने यहां मंगा रहा है। और यही कारण है कि चाइना के सामान अब अमेरिकी बाजार से भरे हुए हैं, अमेरिकी बाजार में भरे हुए हैं चाइना का सामान, क्योंकि मैन्युफैक्चर में चाइना का कोई भी अब मुकाबला नहीं रह गया है। यह अमेरिका ने अपनी नीति बनाई, क्योंकि यहां मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत महंगा है। यहां लेबर मित्र बहुत अधिक महंगी है दूसरे देशों की तुलना में। यूरोप के बारे में मैं अभी नहीं बता सकता आपको। जैसे यहां जो मिनिमम वेज है वो $10 पर आवर है, घंटों के हिसाब से काम होता है, $10 प्रति घंटे, और $1 की कीमत अभी लगभग 65 रुपीज है, मतलब 650 रुपए प्रति घंटे। अगर आप यहां अपने घर में घास काटने वाला भी बुलाएंगे, झाड़ू लगाने वाला भी, या बर्तन मांजने वाला भी, या रोटी बनाने वाली भी, तो 650 रुपए प्रति घंटे कम से कम उसका उसकी मजदूरी होगी। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को लगा कि बाहर के देशों से मैन्युफैक्चर कराया जाए और अपने यहां चीजें मंगाई जाए, और इसका बहुत बड़ा फायदा चाइना ने उठाया। भारत उतना अधिक फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन फिर भी भारत का जो एक्सपोर्ट बढ़ा है और जो ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है खासकर 1990 के बाद से, वो उसी की देन है। अब आप देखिए कि अब अमेरिका में क्या प्रॉब्लम होने लगी है। अमेरिका में प्रॉब्लम ये होने लगी, अब कुछ लोग ये महसूस करने लगे हैं कि अमेरिका ने अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाहर कर दिया है, तो यहां आंतरिक जो रोजगार की स्थिति है वो बहुत कमजोर हो जाएगी। आज अमेरिका के पास जो सही मायने में जो पावर है, जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी सस्टेन कर रही है, वो है इनोवेशन। इसके पास इनोवेशन बहुत जबरदस्त है, और टूरिज्म नो डाउट बहुत जबरदस्त इनोवेशन है। आप देखिए कि व्हाट्सएप, एप्पल, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं सब के सब अमेरिका में हो रही हैं, और इससे इनको कितना, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, इनसे इनको कितनी ज्यादा रॉयल्टी मिल रही है, कितनी ज्यादा इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। तो मित्रों, जब भारत जब मैन्युफैक्चरिंग को महत्व देगा, तो उसकी आबादी को देखते हुए, अनस्किल्ड लेबर को देखते हुए, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने की दृष्टि से अगर इन हम सब चीजों को लेकर के चले, तो आप देखेंगे कि भारत लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की उपेक्षा नहीं कर सकता। अगर हमने इनको खत्म कर दिया, तो ये मान करके चलिए कि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होंगी, वो हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति ले आएंगी और फिर एक अलग तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए भारत को इन सब के बीच में एक संतुलन बना करके चलना होगा, और इसके लिए उन्होंने स्वीडन के साथ समझौता किया है कि कैसे हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी सुविधाएं देकर के इनके पैरेलल ला सकते हैं। इसीलिए आपने देखा है कि भारत सरकार ने भी एक मुद्रा बैंक, जिसके पहले हम चर्चा कर चुके थे, वो मुद्रा बैंक की शुरुआत की है, जो छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वो सस्ते कीमत पर ऋण उपलब्ध कराएगी, ताकि ये भी सस्टेन कर सके। क्योंकि इसीलिए आपने देखा है मित्रों कि जो एफडीआई की जब बात होती है, तो रिटेल मार्केट में एफडीआई लाया जाए या न लाया जाए, इसको लेकर के बहुत बहस होती है। क्योंकि अगर खुदरा व्यापार में अगर आपने आप रिटेल में एफडीआई लेकर के आ गए, तो ये जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं और बड़े बड़े जो शॉप हैं, रिटेलर्स हैं, सुपर बाजार वाले हैं, ये छोटे छोटों को खत्म कर देंगे। फिर ये छोटे कहां जाएंगे? भारत में यही माना जाता है कि लगभग 2 करोड़ लोग खुदरा व्यापार में लगे हुए हैं, 2-2.5 करोड़ लोग लगे हुए हैं, और अगर एक परिवार में हम 5 लोगों को ले लें, तो लगभग 12 करोड़ से 15 करोड़ लोगों का जो जीवन यापन हो रहा है, वो खुदरा व्यापार से हो रहा है। तो मित्रों, ये जो मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को केवल लेकर के, वो केवल इस दृष्टि से चर्चा कर रहा हूं कि कैसे एक छोटी सी घटना होती है जिसे आप सामान्य तौर पर इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन उसे महत्व देकर के और उसे केंद्र में रखकर कैसे आप ढेर सारे इश्यूज के बारे में आप सोच सकते हैं और फिर उस छोटी सी घटना को उसमें गूंथ सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो ये जो स्वीडन के साथ है, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे तो जब भी कभी इतने सारे सेक्टर्स के बारे में जो मैंने अभी चर्चा की जब बात होगी तो आप उसमें एक छोटा सा कंटेंट डाल सकते हैं कि किन किन देशों के साथ इसमें समझौते हुए हैं, तो उसमें स्वीडन का नाम भी आ सकता है। तो मित्रों, ये भारत और स्वीडन के बारे में थी जिसकी मैंने अभी आपसे थोड़ी सी चर्चा की। अब आप देखिए कि जो दूसरी जो खबरें जो न्यूज में थी उसमें जो मुझे महत्वपूर्ण लगी, अभी हालांकि वो अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, वो फाइनल शेप नहीं ले पाई है, इसमें वक्त भी लगेगा, वो था कि कर्नाटक सरकार ने फैसला किया है कि जो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जो जय ललिता जी हैं, अभी फिर से वो चीफ मिनिस्टर बन गई हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में बरी कर दिया था। बरी कर देने के कारण बट नेचुरली के संवैधानिक रूप से अब चीफ मिनिस्टर जो पहले चीफ मिनिस्टर थी और बाद में आरोप लगने के कारण ही उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था, तो चूंकि न्यायालय ने उन्हें आरोप से बरी कर दिया था तो इसीलिए उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और अभी वो चीफ मिनिस्टर हैं। आपको ध्यान होगा कि इसको लेकर के उस समय काफी एक थोड़ा सा विवाद भी चला और न्यायालय के ऊपर थोड़ा सा लोगों ने एक प्रश्न भी उठाया, अलग अलग तरीके से बात कही जाने लगी कि ऐसा क्यों हुआ। उसी समय दो तीन घटनाएं हुई थी, आपको ध्यान होगा सलमान खान को खासकर हाई कोर्ट से जमानत मिलने की बातों को लेकर के, इस तरह से दो तीन घटनाएं उस समय हो गई थी कि लोग भौचक्के से रह गए थे कि किस तरह से घटनाएं घट रही हैं। तो उसके तहत अब कर्नाटक सरकार ने फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि अगर इनकी याचिका स्वीकार हो गई तो फिर जयललिता जी चीफ मिनिस्टर रह पाएंगी नहीं रह पाएंगी, क्या स्थिति होगी, वो एक संवैधानिक प्रावधान है, अब देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन ये जरूर है मित्रों कि भले ही हम न्यायालय कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बारे में चाहे जो भी कहें, कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं, क्या संवैधानिक स्थितियां हैं, न्यायिक स्थितियां हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि खासकर पॉलिटिकल सेक्टर में जो बहुत ज्यादा अफरा तफरी आ गई थी या करप्शन आ गया था या अनैतिकता बढ़ गई थी या मनमानी पना आ गया था या आता जा रहा था, लोग निडर होते जा रहे थे और नेताओं को सच पूछे तो किसी के बारे में कोई डर जैसा ही नहीं रह गया था कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे, एक तरह की विचित्र किस्म की तानाशाही की प्रवृत्ति फैल रही थी पॉलिटिक्स में, उसको कंट्रोल करने में कोई दो राय नहीं कि न्यायालय की बहुत 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 बड़ी भूमिका रही है और चुनाव सुधार की दिशा में भी न्यायालय ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए बीच बीच में और खासकर जो इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिए बल्कि जो फैसले भी सुनाए उसकी वजह से धीरे धीरे जो इलेक्शन रिफॉर्म है उसका भी बहुत बड़ा काम हुआ है। अब देखते हैं, अब ये स्टोरी अभी शुरू हुई है, आगे वो क्या रूप लेती है। मित्रों, एक खबर थी मैगी को लेकर के, इसके बारे में कल हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि सरकार ने कहा है कि वो अभी जो कमीशन है आयोग जो उसकी जांच कर रहा है उसके अभी रिकमेंडेशन या कह लीजिए उसके एक जो आउटकम होंगे उसके जो निष्कर्ष होंगे उनकी प्रतीक्षा कर रही होगी। लेकिन सरकार ने यहां जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है जिसको हमें एक दूसरे एंगल से सोचना पड़ेगा और इस सिविल सर्विस की दृष्टि से तैयारी भी करनी पड़ेगी थोड़ा सा, वो ये कि गवर्नमेंट ने यह कहा है कि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार करने वाले के ब्रांड एम्बेसडर, मैगी के लिए उन्होंने फिर न्यूज में तीन एक्ट्रेसेस के नाम लिए जिसमें एक प्रीति जिंटा की उन्होंने बात न्यूज में आई थी, दूसरी बात माधुरी दीक्षित की आई थी और तीसरी अमिताभ बच्चन जी की आई थी। तो ये तीन इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि यदि मैगी में उस तरह की गड़बड़ी पाई गई तो डेफिनेटली जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मैं समझता हूं मित्रों ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, बड़ी बात इसलिए है कि ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं कि भाई हमको उससे क्या लेना देना है, हमको तो जैसा कहा गया वैसा हमने किया, लेकिन आप एक जो सोसाइटी के प्रति जो रिस्पांसिबिलिटी होती है आप उससे सीधे सीधे बच नहीं सकते, क्योंकि इनको लिया क्यों जाता है, इतने जो जो सेलिब्रिटीज हैं उन्हीं को विज्ञापन के लिए क्यों लिया जाता है, सामान्य व्यक्ति को क्यों नहीं लिया जाता? इसीलिए कि जनता इन सेलिब्रिटी के कहे हुए पर भरोसा करती है और भरोसा करके वो जो कहती है उसे वो फॉलो करती है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति मैगी बेचे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये कहें तो डेफिनेटली लोगों पर असर पड़ेगा और विज्ञापन फिर उनकी बिक्री को बढ़ाएगा। तो ऐसे समय में बिल्कुल ये सोचना बहुत गलत नहीं है कि अगर कोई सेलिब्रिटी इस तरह से किसी चीज के गुणवत्ता के बारे में बता रहा है तो एटलीस्ट अपने लेवल पर तो वो श्योर हो कि वो जो कहने जा रहा है वो सही है या नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इससे एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात होती है वो प्रिवेल करेगी और आगे चल करके फिर जो विज्ञापन करने वाले जो सेलिब्रिटीज हैं वो विज्ञापन में कुछ कहने से कम सोचेंगे तो, या प्रमाण तो मांगेंगे कि भाई ये बात जो हमसे आप कहला रहे हैं सच भी है या नहीं है। तो मित्रों, इसको थोड़ा सा हम अलग रूप में देखेंगे और अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसकी खबरें बढ़ेंगी शायद इस सेंस पे भी, इस पॉइंट को भी लेकर के लोग आर्टिकल्स लिखें या एडिटोरियल कमेंट भी आए। मित्रों, इसके बाद जो एक छोटी सी और खबर थी वो यही थी कि जो हमारा जो चुनाव सूचना जो आयोग है और जो विजिलेंस कमीशन है उनके जो पद खाली थे उसके बारे में सरकार ने फैसला कर लिया है। नाम नहीं बताए गए हैं लेकिन सर्वसम्मति से फैसला हो गया है। तो सर्वसम्मति से फैसला होना एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लक्षण है, क्योंकि ये बहुत ही उच्च पद हैं, संवैधानिक पद हैं और निश्चित रूप से इन पदों पर जिन लोगों को बैठाया जाता है अगर वो सर्वसम्मति से उनका चुनाव होता है, चुनाव क्या मतलब उनका नॉमिनेशन होता है या उस नाम पर हर कोई अपनी सहमति देता है तो एक बहुत अच्छी बात होती है और बहुत शुभ स्थिति भी होती है। तो मित्रों, AIR न्यूज के बारे में आज बस इतना ही और आपको मालूम है कि अभी फिलहाल हम अपने जो ईमेल या फीडबैक वाला जो चरण है उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोग अपनी ईमेल भेजते रहिए, उससे निश्चित रूप से उन सब के जवाब आप लोगों को बाद में इकट्ठे मिलेंगे। अभी ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है उसके अपने कुछ कारण हैं, समय निकालना और दूसरी चीजें, तो मैं फिलहाल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जो न्यूज़ की कंटिन्यूटी है मुझे खुशी है कि हम उस कंटिन्यूटी को तो एटलीस्ट मेंटेन आप लोगों के साथ कर पा रहे हैं। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं आज के इस ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करना चाहूंगा और एक बार आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि आप सब मिलकर मिस्टर राय के स्वस्थ होने की कामना करें और ईश्वर से प्रार्थना भी करें कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और मिस्टर राय मुझे जल्दी से जल्दी अपने स्वास्थ्य के शुभ सूचना भेजें ताकि मैं यह शुभ सूचना आप सब तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। तो मित्रों, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।